जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इसमें जो है इंडिया के जो टॉप साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके काम जो हैं छपते हैं। जैसे हम कहते हैं ना दुनिया के लेवल पे जो सबसे बड़ा है वो लैंसेट है, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा वो है, उसमें ये सारी अपनी रिसर्च छपते हैं। इनके मुताबिक, इन साइंटिस्ट के मुताबिक, वो कह रहे हैं कि जो इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, वो कोरोना वायरस से कितने लोग अफेक्टेड हैं उनकी सही नंबर नहीं बता रही है। इनकी जो आज रिपोर्ट पब्लिश हुई है इन इंडिया जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में, उसमें वो कह रहे हैं कि द कंट्री हैड ऑलरेडी रीच 6.5 मिलियन केसेस इन अर्ली मे, जबकि जो है हेल्थ मिनिस्ट्री अभी तक क्लेम कर रही है कि इंडिया के अंदर सिर्फ 4.6 मिलियन केसेस हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत सारे केसेस अनडिटेक्टेड जा रहे हैं और मिनिस्ट्री उनको सही तरह से प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रही, नहीं फाइंड आउट कर रही। हमने जो
इतना बड़ा मुल्क है, इतना इंटीरियर का कितना है,
हाँ जी हाँ जी,
इट इज नॉट लाइक हियर, वहाँ इंटीरियर्स जो है वहाँ पर, जो जिसको गांव कहते हैं ना, गांव वगैरह में, वहाँ पर जो है लोग वहाँ तक पहुँचना, पहाड़ी इलाकों में पहुँचना, वहाँ से काउंट करना, इट इज यस आई बिलीव दैट।
हाँ, तो वो कह रहे हैं जी कि ये तो मई में ही केसेस जो है 6.5 मिलियन हो गए थे, तो आप अब कमिंग सितंबर आप कैसे 4.6 मिलियन आप कह रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा है, तो इनको सही तरह से आप ट्रेस करना शुरू करें। ओके जी, आज जो है हम कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की 72nd डेथ एनिवर्सरी जो है वो आज कर रहे हैं ऑब्जर्व, तो इसके ऊपर आज जो प्रेसिडेंट अलवी साहब थे वो मज़ारे कायद पे गए, और गवर्नर सिंध जो थे इमाम इस्माइल, और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और सब लोगों ने जो है, अब मुझे बड़ी हैरत होती है, अच्छा हमारे जो जनरल बाजवा साहब हैं उन्होंने भी कायद अजम के विजन के बाद, अब हर साल उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी आती है, उनकी डेथ एनिवर्सरी भी आती है, और बड़ा उनके विजन के बारे में बात की जाती है, तो मुझे समझ नहीं आती माजिद भाई कि विजन के बारे में बात करने से हम कितना बता लेंगे कौम को कि जी हम तो वी आर रियली इन लव विद जिन्ना साहब, जब तक कि उनके असूल हम जो हैं वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे
और फॉलो ना करें
और फॉलो नहीं करेंगे। ये कुछ न्यूज है जो कि मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। डॉन न्यूज के अंदर आज एक स्पेशल रिपोर्ट आई है माजिद भाई, द लेगेसी ऑफ मिस्टर जिन्ना 1876 to 1848, और उन्होंने बड़ी आज खूबसूरत तस्वीर भी की है कायदे आजम की, बड़ी ब्यूटीफुल, आज जीशान नहीं है वरना मैंने कायदे आजम की बड़ी अमेजिंग तस्वीरें आज वेरी रेयरली सीन पिक्चर्स आज मैंने की थी, और उसमें से आज ये भी एक पिक्चर थी जो डॉन न्यूज में उन्होंने छापी है, बड़ी हल्की सी उनके मुंह पे स्माइल है, एंड यू नो दैट ब्यूटिफुली कट ब्रिटिश जो सूट उन्होंने पहने, और डॉन न्यूज ऐसे करके वो पढ़ रहे हैं, और बड़ी तो उसमें आज उन्होंने सारी वो जो चीज है ना वो की है कि कैसे उन्होंने ये भी बताया कि कब वो डॉन न्यूज में आए थे और कैसे उन्होंने हमें पोज दिया और हमने उनकी तस्वीर खींची, बड़ी वो आइकॉनिक पिक्चर थी तो वो खींची, लेकिन उन्होंने पूरा ट्रेस किया है कि जिन्ना का विजन क्या था और वो क्या चाहते थे और इस मुल्क में वो क्या लाना चाहते थे और कैसे वो गवर्नमेंट को रन करना चाहते थे और वो कैसे वो करते थे, वो हमने इस मुल्क में फॉलो नहीं किया है। उन्होंने जो आज सबसे बड़ी बात इसके अंदर की है, उन्होंने कहा है कि जी यहां पे जो आपने ये जो हेट्रेड जो हार्पर करनी शुरू कर दी है ना इस मुल्क के अंदर, ये हेट्रेड कभी भी उनका विजन नहीं था, वो तो बल्कि जब उन्होंने शुरू की थी पॉलिटिक्स तो वो हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे और उनके वर्ड्स थे कि हमको साथ में रहना चाहिए। बहुत बाद में आके जब उनको पता चला कि जो है ये अब साथ में नहीं रह सकते हैं, और वो वही जो जसवंत सिंह की हम उस दिन किताब का जिक्र कर रहे थे, द जिन्ना ऑफ पाकिस्तान इंडिया, तो उसमें भी उन्होंने लिखा है कि उन्होंने तो कसूरवार गांधी जी और नेहरू जी को कहा है ना कि इनकी वजह से जो है पाकिस्तान क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये अपनी पॉलिसीज में जो है जरा स्टेप बैक करने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए जिन्ना साहब को लगा कि मुसलमानों के लिए और वो नहीं है। तो ये चीज सारी जो है इन्होंने आज ट्रेस की है कि भाई ये क्या उनका विजन था क्या। इसके अंदर एक आपको याद होगा एक हिस्टोरियन थे बेवरली निकल्स,
सही,
तो बेवरली निकल्स ने बड़ी खूबसूरत तहरीरें जो है ना वो जिन्ना साहब के बारे में लिखी हैं, और वो कहते हैं कि हमेशा जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की, हिंदुस्तान की यानी कि सब कॉन्टिनेंट की, तो हमेशा गांधी जी और नेहरू जी को हमेशा टावरिंग पर्सनैलिटी बताया जाता है, लेकिन एक आदमी जिसको कि ये मिस कर जाते हैं वो जिन्ना है। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन एशिया, ये उनका कहना है, और वो कहते हैं कि लुकिंग, और बड़ी उनकी वो जो उन्होंने जो एक वो की है, उन्होंने कहते हैं लुकिंग एवरी बिट लाइक अ जेंटलमैन ऑफ स्पेन,
यू गॉट इट,
ऑफ द ओल्ड डिप्लोमेटिक स्कूल, द मिराकुलसली टेलर्ड सूट of the leader of the All India Muslim League, where he held a very pivotal place. और फिर वो आगे बहुत सारी वो चीजें करते हैं. उसके बाद क्या कहते हैं, इफ गांधी गोज देयर इज नेहरू, राजा गोपाल आचार्य गोज देयर इज पटेल, एंड देन देयर आर अ डजन अदर्स, बट इफ जिना गोज हु इज देयर, हु इज देयर,
नोबडी.
इतनी ब्यूटीफुल इसकी तहरीर है, इसकी बेवरली निकल्स की, माजिद भाई ब्यूटीफुल. और फिर वो उसमें कहते हैं कि आई ऑनेस्टली बिलीव, जो उसकी जिना साहब की उसने वो जो सारी वो की है ना रिलेट, उसमें वो कहते हैं कि जिना साहब ने ये कहा था, जो कि ये फॉलो नहीं कर रहे पाकिस्तान के अंदर. वो कहते हैं आई ऑनेस्टली बिलीव दैट द डे विल कम व्हेन ओनली मुस्लिम्स, when not only Muslims but this great community of Hindus will also bless, if not during my lifetime but after I am dead, in the memory of my name. और उन्होंने कहा कि उसने हमेशा कहा था जिन्ना ने कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर सब जो है इकट्ठे रहेंगे और उसके अंदर कोई भी डिविजन. तो ये बड़ी ब्यूटीफुल पीस है, इट्स अ वेरी लॉन्ग पीस बाय बेवरली निकल्स. तो ये आप पढ़ सकते हैं. वॉशिंगटन पोस्ट की एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक और भी वो है, पार्टीशन एंड द बर्थ ऑफ पाकिस्तान. और इसके अंदर भी उन्होंने बहुत तारीफ की है कायदे आजम की. उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूटली अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, एलिगेंटली मैनर्ड लॉयर बैक फ्रॉम लंडन विद हाईली ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस इन बॉम्बे, एंड ही वॉज द प्राइम अपोसल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बिफोर ही सॉ दैट देयर वर कम्युनल रिफ्ट्स. और फिर ये भी बड़ी खूबसूरत उन्होंने स्टोरी लिखी और उसमें उन्होंने बताया जिना साहब का कि उस बंदे का क्या विजन था, वो अपने मुल्क में क्या चाहता था और वो किस तरह से चाहता था कि मुल्क को आगे मैं लेके जाऊं और कैसे ये मुल्क चले, लेकिन उसका सारा जो विजन था इन्होंने जो उसके बाद आए उसको डिरेल कर दिया. ब्यूटिफुल स्टोरी ये भी है, वॉशिंगटन पोस्ट की है, ये पढ़ सकते हैं जो भी कोई पढ़ना चाहते हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स में भी जी एक बहुत ब्यूटीफुल एक स्टोरी आई है, एंड दैट इज हाउ पाकिस्तान अबंडेंड जिनाज आइडियल्स, एंड दिस स्टोरी आल्सो इज अमेजिंग. माजिद भाई इतनी ब्यूटीफुल ये स्टोरी लिखी हुई है और उसमें जिना साहब का उन्होंने एक एड्रेस जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उसमें उन्होंने कहा, और फिर उसके यानी बैकग्राउंड में उन्होंने पूरा ये आर्टिकल लिखा है कि किस तरह पाकिस्तानी जो है जिना की आइडियोलॉजी से बिल्कुल ही 180 डिग्री दूर चले गए. अच्छा जी, उन्होंने जो उनकी स्पीच लिखी है जिना साहब की, वो कहते हैं कि व्हेन ही एड्रेस द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन पाकिस्तान ही सेड यू आर फ्री, एंड दिस वाज फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान, यू आर फ्री टू गो टू योर टेंपल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान. यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट.
एग्जैक्टली.
और फिर उसके बाद वो कहते हैं, हाँ, और फिर वो उसको कहते हैं जो ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो स्टोरी लिखी है ना माजिद भाई, इसके अंदर वो कहते हैं कि पहली खराबी पैदा हुई जो ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन आया था कि जिसमें पाकिस्तान का नाम सबसे पहले, क्योंकि जिना साहब ने पाकिस्तान का नाम जो प्रपोज किया था दैट वॉज रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. तो ये जिस वक्त ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन आई तो इसमें उन्होंने नाम कर दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. और कहते हैं कि उस वक्त बहुत ज्यादा लियाकत अली खान साहब के पास ऊपर जो रिलीजियस पार्टीज थी उनका प्रेशर था और वो कहते हैं ये पहला स्टोन जो था वहां पे पाकिस्तान के अंदर हेट्रेड का रखा गया और वो ऐसे मूव करते 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 जो है इन 72 ईयर्स वो बिल्कुल ड्रिफ्ट हो गई जो जिना की मेन फिलॉसफी थी उससे. तो ब्यूटीफुल आर्टिकल अगेन इन न्यूयॉर्क टाइम्स, तो ये भी आपका पढ़ने वाला है. इसके अलावा अल जजीरा की बहुत जबरदस्त स्टोरी है, द 1947 पार्टीशन रीराइटिंग हिस्ट्री. ब्यूटीफुल स्टोरी अगेन ऑन पाकिस्तान एंड जिना साहब्स कंट्रीब्यूशन एंड ऑल. तो आई बिलीव ऑल ऑफ अस मस्ट रीड दीज जो है आर्टिकल्स. WHO ने जी आज पाकिस्तान की बहुत ज्यादा तारीफ की है और WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने आज कहा है, आज उन्होंने ऐसी जलाने वाली बात की है कि दुनिया बड़ी जलेगी. उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की एग्जाम्पल बहुत सारे कंट्रीज को फॉलो करनी चाहिए. कैसे उन्होंने कोरोना वायरस पे कंट्रोल किया है, हालांकि बहुत पुअर इनके हेल्थ सिस्टम्स थे, बहुत पुअर हेल्थ सिस्टम से, बट द वे दे हैव एंड द वे दे हैव डेवलप्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर टू फाइट अगेंस्ट COVID-19, तो वो है. ISPR की जी आज एक स्टोरी आई है, यानी एक स्टेटमेंट आई है. आज स्टेटमेंट के मुताबिक यूएस सेंटकॉम के जो कमांडर जनरल हैं केनेथ मैकेंजी जूनियर, वो आज जनरल बाजवा के साथ मिले हैं और उन्होंने वो आज उसके ऊपर वही अफगान जो पीस प्रोसेस है उसके ऊपर बात की है, क्योंकि सैटरडे को इनकी जब टॉक्स जो है फॉर्मल टॉक्स वंस अगेन दोहा में शुरू होने लगी हैं, तो उससे पहले वो इनके साथ बैठे हुए थे आज और उनसे सारे कह रहे थे और फिर से उन्होंने जी बड़ी तारीफें की हैं। तो जनरल बाजवा साहब फिर वो कश्मीर का मसला लेकर आ गए, उन्होंने कहा ठीक है तारीफ शरीफ ठीक है पर कश्मीर का मसला भी उधर ही बैठा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि अमेरिकन आपको पता ही है कैसे हैं, वो तो आए अपनी यू नो टू ग्राइंड देयर ओन एक्स राइट, कि हमारी बात सुनो जी साड़ी जान छुड़ाओ जी अफगानिस्तान तो, हाँ जी कश्मीर का मसला चलता ही रहेगा सानू बड़ा अफसोस है वे होवे वो चलता रहेगा, जान हमारी छुड़ाओ अफगानिस्तान से। तो जनाब आज वहां से, अच्छा जनाब वी आर राइट एट द एंड ऑफ आवर न्यूज और बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी तो मैं देख के बड़ा हंसी। आपको पता है ये अनुराग कश्यप जो हैं इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़ी जबरदस्त फिल्में बनाते हैं और उसके साथ वहां पे इंडिया के जो कॉमेडियन है कुणाल कामरा तो बड़े मशहूर हैं, वो कॉमेडियन जो इंडिया से हैं उनको तो जरूर इसके बारे में पता होगा। तो उन्होंने आज क्या किया है कि एक आपको पता है कि वो रिपब्लिक टीवी के एक जर्नलिस्ट हैं अर्णव गोस्वामी साहब, तो वो जो बहुत चीख चीख के ऐसे ऐसे बात करते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, इंडिया वांट्स टू नो, इंडिया वांट्स टू नो, बड़ा ऐसे ऐसे करके जो बातें करते हैं, कभी उनको कोई कह दे बेचारा मुसलमान वहां पे आके आई एम योर ब्रदर प्लीज लिसन, नो नो यू आर नॉट माई ब्रदर, तो बड़ा इस तरह। तो आज उन्होंने क्या किया उन दोनों ने एक वो फ्रेम में दोनों ने अलग-अलग एक फ्रेम के अंदर एक एक चप्पल लगाई है, उसको फ्रेम किया है और वो कह रहे हैं कि हम जर्नलिज्म में एक्सीलेंस अवार्ड जो है इनको देने जा रहे हैं तो उनको खैर जी अंदर नहीं जाने दिया गया। तो आज उनकी तस्वीरें जो ट्विटर पे थी वो दोनों जो थे ऐसे करके खड़े हुए थे अपनी वो फ्रेम वाले की तस्वीर लेके ऐसे वहां पे। और जनाब इंग्लैंड जो हैं वो उन्होंने आज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उनका पहला ओडीआई था, ओडीआई जो शुरू किया था, तो उन्होंने टॉस जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो थी उसने पहले जो थी बैटिंग की थी और उसके बाद जो है इंग्लैंड कर रहा था तो इंग्लैंड उसको चेज कर रहा था तो वो चेज अपने में पूरे नहीं यानी फॉलो नहीं कर सके, कुछ टारगेट था 295 या कुछ जो इनको फॉलो करना था और ये 276 फॉर 9 जो थे आउट हो गए थे। तो एज अ रिजल्ट द फर्स्ट ओडीआई इज वन बाय ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, और ये जो इसमें आज जो ऑस्ट्रेलिया के इस मैच की सबसे बड़ी बात ये थी कि जो इनके बड़े स्टार बैट्समैन है स्टीवन स्मिथ वो नहीं थे, कि उनको ये हुआ था कि एक स्टोरी आई थी कि जी वो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें कोई बॉल उनको लग गया तो चोट आ गई, दूसरे ने कहा कि नहीं वो, तो मतलब ऐसे मिली जुली खबरें आ रही थी। तो अब उनका जो है कनकशन का टेस्ट हो रहा है स्टीवन स्मिथ का, तो अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो वो सेकंड शायद ओडीआई भी नहीं खेल सकेंगे, लेकिन अगर ठीक हो जाएंगे तो फिर सेकंड ओडीआई वो खेल सकेंगे। हाँ जी, तो ये थी जनाब हमारी आज की खबरें।
बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया जी, एंड इसके बाकी की खबरें मंडे को इंशाल्लाह,
मंडे को इंशाल्लाह, लेकिन हम कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ बातें एक दो जनाब साहब को याद कर सकते हैं हम
नए स्टूडियो से।
हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह
मंडे को इंशाल्लाह आपसे करेंगे, कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम हैं हमारे, पहले स्पॉन्सर्स के पैगाम, फिर आपसे बातचीत चलती रहेगी। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
आप सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के साथ बहुत ही आसानी से अपने घर से विदेश पैसे भेज सकते हैं, वो भी जीरो डॉलर ट्रांसफर फी पर। आप पैसे ऑनलाइन या सीआईबीसी के मोबाइल ऐप से भेज सकते हैं। आज ही अपना पहला ट्रांसफर करें और पाएं $50। अधिक जानकारी के लिए cibc.com/transfer पर जाएं।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स ना लड़ रहे हुंदे हो जिस ना तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन ले या सलाह लैण ले आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000।
काल टायर। सर्दियों के लिए गाड़ियों के टायर तब्दील करने हो या नए टायर खरीदने हो तो कार टायर पर जाकर रजिस्टर करें और रेडियो 770 AM का हवाला देने पर 4 नए टायरों की इंस्टॉलेशन बिल्कुल मुफ्त करवाएं। ये पेशकश 15 अक्टूबर तक महदूद है। KALTIRE.com
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ।
ਹਾਂ, ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਨੀਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਕੈਨੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 142 ਕੈਨੇਡੀ Road South, Brampton. Call 905-874-7171.
Hotstar Premier Nights. Watch the year's biggest blockbusters streaming straight to your screen. Exclusively on Hotstar. Sign up at a special price of $44.99.
When you use the promo code EOS, visit hotstar.com/CA.
اونٹیریو کے سکولوں کو بحفاظت دوبارہ کھولنے میں ہر ایک کا اہم کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اونٹیریو کی حکومت نے ڈاکٹروں، صحت کے عہدیداروں، سکول بورڈ اور اساتذہ کے ساتھ مل کر ہمارے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔ مل کر کام کرنا حکومت کے اس منصوبے میں جسمانی دوری، سکولوں میں زیادہ اساتذہ، نگراں اور نرسیں رکھنا، ماسک پہننا، صفائی ستھرائی اور ہاتھ صاف کرنے اور طلبہ اور سکول کے عملے کی بہتری کو یقینی بنانے کے لیے دیگر اقدامات شامل ہیں۔ مزید جاننے کے لیے ملاحظہ کیجیے ontario.ca/reopeningschools۔ حکومت اونٹیریو کی جانب سے ادائیگی کردہ۔
قرضے سے نجات کے لیے ایک ہی نام، محمد صدیق، آل دا سولوشن، پرسکون زندگی اور کریڈٹرز کی کال سے چھٹکارا۔
محمد صدیق آل ڈیٹ سولوشن، بینکرپسی، انسالوینسی، کنسالیڈیشن کرتے ہیں اپ ٹو 80%۔ محمد صدیق آپ کے لیے کام کرتے ہیں، پرسکون زندگی، اچھی صحت اور لمبی عمر کی ضامن۔ اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے، قرضوں سے پاک کرنے کے لیے رابطہ کیجیے محمد صدیق 416-671-0577۔
ایشین فوڈ سینٹر 905-793-1338۔ آپ کے کچن کی تمام ضروریات ایک ہی چھت تلے۔ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز، گروسریز اینڈ سٹیبلز، بریڈ، ڈیری اینڈ ایگ، بیوریج اینڈ کنفیکشنری، برانڈیڈ فوڈز، پرسنل کیئر اینڈ ہاؤس ہولڈ، سویٹس اینڈ سموساز۔ Order now for in-store free pickup. 905-793-1338. Home delivery is also available. Asian Food Center. 905-793-1338. Asian Food Center.
کیا بات ہے بیٹے، بڑی آزاد نظر آ رہی ہے۔
ابو جان، خدا کا واسطہ، اس گاڑی سے تو بہتر ایک گدا گاڑی خریدتے، ہر موڑ پہ رک جاتی ہے۔
او بچے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ لاؤ گاڑی کی چابی دو، ابھی لے کر جاتا ہوں پریمیم آٹو رپیئر پر۔ گاڑی کی نبض دیکھ کر خرابی کی جڑ تک پہنچ جائیں گے۔
میری سہیلی نے بھی کہا تھا
وہاں پر کولنگ سسٹم، انجن ٹیون اپ، چار ویل کمپیوٹر بیلنس، بریکس، نئے اور پرانے ٹائر، ساتھ آئل فلٹر مفت میں چینج، اسٹارٹر، آلٹرنیٹر گارنٹی کے ساتھ ٹھیک کرتے ہیں۔ بس اس کے بعد تمہاری گاڑی فر فر بھاگے گی۔ 21 Melwick Drive، ریٹوبیکو، ٹیلی فون 416-747-6800۔
کہتے ہیں کہ مایا کو کھینچے مایا کر کر لمبے ہاتھ۔ ہیری سون دی میجسٹک مارگیجز کے ساتھ ریزیڈینشل، کمرشل مارگیج، ری فائنینسنگ آپ نے کرنی ہے، کسی قسم کی انویسٹمنٹ پراپرٹی لینی ہے، سارے بینکرز اور لینڈرز کے ساتھ ڈیپ تعلقات ہیں ان کے۔ آپ کو فائنینسنگ کا بندوبست بھی ہو جائے گا اور چارجز بھی کوئی نہیں دینے پڑیں گے۔ ہیری سون جی بڑی کمال کی تگڑم لڑا سکتے ہیں۔ بس آپ کال کر لیجیے اور پیسے کا رینج ہو جائے گا۔ $228 سے $1000 مہینہ کیسے بچا سکتے ہیں؟ کال ہیری سون now 647-228-1000 228-1000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
جی سامعین، ویلکم بیک اگین، اینڈ ناظرین آپ کو بھی ویلکم بیک اگین۔ بھائی آج 6:30 PM ٹورانٹو بلو جیز اینڈ نیو یارک میٹس آر پلئنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ دیٹ۔ اینڈ اس کے بعد 9 PM تو پورا کا پورا ٹورانٹو خالی ہو جائے گا آج رات کو 9 PM۔ وہ کیوں پوچھے کیوں؟ ہاں، اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو۔ اس لیے کہ آج ٹورانٹو ریپٹرز جو ہے وہ اپنا 7th and final game فار دس کوارٹر فائنل، اس کا جو ہے 7th and final game جو ہے وہ کھیلنے جا رہے ہیں صاحب بوسٹن سیلٹکس کے ساتھ۔ اینڈ آپ کو پتا ہے لاسٹ 6 گیموں میں ٹورانٹو نے بڑی تھرلنگ وکٹری حاصل کی، تو اب ایک اور گیم، لیٹس سی واٹ ہیپنز۔ میرے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر روی گوئل ہیں، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی ایک کلینک ہے ان کی 10970 بریملی روڈ، بریملی اینڈ کنٹری سائڈ کے کارنر پر، بی این سی میڈیکل کلینک۔ اور یہاں پر جو ہے ان کے جو چشموں کا بزنس تھا، چاہے وہ آئی گلاسز ہوں، چاہے وہ सनग्लासेस हो, बड़ी अच्छी प्राइसेज पे आपको मिल सकती हैं। तो डॉक्टर रवि का मैसेज, डॉक्टर साहब वेलकम टू रेडियो साजोवास, कैसे हैं आप?
हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर, मैं अच्छा हूँ, लेकिन मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ रैप्टर्स के बारे में, क्योंकि आज इतनी लोगों में क्रेज है खास करके यंगस्टर्स में कि अभी आज रैप्टर की 7th गेम है, देखो क्या डिसीजन होता है। सभी अभी से अपने जो पिज्जा लोगों ने खरीद लिए कि 9 बजे शुरू हो जाएगा मैच, तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि दोनों में से एक टीम जरूर जीतेगी, दोनों में से एक टीम जरूर जीतेगी, आइदर रैप्टर और सेल्टिक्स। जो भी अच्छा खेलेगा, जो भी खुदा जिसके ऊपर जिसकी रहमत होगी वो डेफिनेटली जीतेगा, उसे कोई हराने वाला नहीं।
तो आपसे मैं ये कहता हूँ कि आप जरा दुआ कर दें डॉक्टर टोरंटो रैप्टर्स के लिए।
चलो फिर ऐसी है तो मैं पहले मुझे ठहर
जाओ सर, ले दे के डॉक्टर साहब बात हो जाएगी, आप परवाह ना करें, आप जरा दुआ कर दें।
पर सर अगर मैं फिर वो अगर ना कबूल हुई ना फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए थोड़ा दो मिनट रुक जाओ, मैं मैसेज पहले दे दूँ अपना, तो अगर बीच में से उसने कहलाना होगा तो वो अगर मेरे मुंह से निकलना होगा तो वही कहलाएगा।
क्या बात है जी,
तो मैं कभी अपना मैसेज दे दूं तो हो सकता है बीच में अगर पता नहीं किसके बारे में वो कहला देगा तो वही होगा सच पक्का।
यू गॉट इट।
तो मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ आपके स्रोतों को कि जो BNC मेडिकल सेंटर है ब्रैम्पटन में, जो कि जो हमारा नया हॉस्पिटल है वो ब्रैमली पर है, ब्रैमली पर जब आप नॉर्थ को जाओगे तो नेक्स्ट जब नॉर्थ को जाते हो तो उसको कंट्री साइड काटती है, तो उस एग्जैक्ट इंटरसेक्शन ब्रैमली एंड कंट्री साइड के ऊपर गैस स्टेशन है, और उस गैस स्टेशन वाले प्लाजे में हमारा ये BNC मेडिकल सेंटर है। इस कारण ये है कि BNC का मतलब ये है, बी मीन्स ब्रैमली, सी मीन्स कंट्री साइड, तो उसमें हमारा जो चश्मों की दुकान है अंडर द सेम रूफ जो BNC विजन सेंटर बोलते हैं, उनमें वो हम बंद करने जा रहे हैं, और उसमें जितनी भी ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड सनग्लासेस पड़ी हैं, आई फ्रेम्स पड़े हैं, बच्चों के फ्रेम पड़े हैं, वो हम गुड प्राइस नहीं दे रहे, वेरी गुड प्राइस नहीं दे रहे, वो हम कॉस्ट प्राइस पर दे रहे हैं। नोबडी कैन इवन थिंक, जब वो आते हैं तो वो सोचते हैं कि रियली यही प्राइस है, वो हमने कभी हमने बंद करना है, जब तक हम बंद नहीं करते यही प्राइस होगी। फॉर एग्जाम्पल जो रेवन की सनग्लासेस हैं या वो पोलराइज होती हैं, वो 400 की 350 की होती हैं, हमारे पास 120-150 की मिल जाती हैं। 120 जो पोलराइज के बिना है, जो पोलराइज है वो 150 है, तो मार्केट में कोई भी 300 से कम प्लस टैक्स देना पड़ता, हम भी ऐसे ही लेते, देखोगे अब तब हमारी लिवलीहुड थी। इसी तरह जितने भी नॉन ब्रांडेड आई ग्लासेस हैं, वो कोई 150 का था, कोई 200 का था, कोई 250 का था, कोई 300 का था, टू 300, तो अब बड़ा मुश्किल है उनको डिफरेंट सेल्स में डालने के लिए, सभी हमने इजी कर दिया, 100 के 2 अच्छे ही हैं, ये आप आकर देख लेना। और इसी तरह बच्चों के जो फ्रेम्स हैं, वो फ्रेम प्लस लेंजेस हम $85 के देते हैं, $25 का फ्रेम है, $60 के लेंस हैं, 85 के हैं, एक ले लो, दो ले लो, तीन ले लो। और इसी तरह जितने भी बच्चों की सनग्लासेस हैं बड़ी प्यारी डिफरेंट कलर्स की, येलो, ग्रीन, रेड, पता नहीं ब्राउन, वो $20 की है, यूजली हम 60-70 की देते थे, वो कॉस्ट हमारी 20 है, पर बच्चों के लिए स्पेशल है कि अगर बच्चे के पास दो लेंगे तो मैं तीसरी को, अगर बच्चा प्यारा होगा, बच्चे सभी प्यारे होते हैं, माँ बाप के दैट्स रॉन्ग ऑन माय पार्ट, बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, तो उनको अगर एक एक्स्ट्रा भी देनी पड़ेगी श्योर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कल काइंडली सैटरडे एंड संडे 11 to 2 खोलते हैं हम, और मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे 4 दिन हम 12 to 5 तक खोलते हैं। जितनी जल्दी आओगे सिलेक्शन थोड़ी सी बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि हम नया सामान नहीं मंगाना चाहते। इसी तरह जितने भी लेंजेस हैं, चाहे वो सिंगल विजन है, चाहे बाईफोकल है, चाहे प्रोग्रेसिव है, कोई टिंट डलाना है, ट्रांजिशन डलाना है, AR डलाना है, वो भी कॉस्ट प्राइस पर है। प्राइस मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जब हम प्राइस बोल देते हैं ना, तब कुछ लोग, नॉट ऑल बट सम लोग, दूसरे स्टोरों पर जाकर बताते हैं कि आपका तो इतना ज्यादा प्राइस है, वहां पर तो इतने के मिल रहे हैं, दैट्स टोटली रॉन्ग। हम वो इसलिए मजबूरी में दे रहे हैं क्योंकि हमने बंद करना है, अदरवाइज तो वो जो दूसरे भी देते हैं वही हमारा प्राइस था ऑलमोस्ट। तो अगर पैसे काफी सेव करनी है तो प्लीज हमारा BNC मेडिकल सेंटर के बीच में अंडर द सेम रूफ वही है विजन सेंटर, चश्मों की दुकान, आप आए ब्रैमली एंड कंट्री साइड की नुक्कड़ पर, और टेलीफोन है 289-569-0127 289-569-0127 या दूसरा नंबर है 905-793-5866। रैप्टर जीतेगा।
यू गॉट इट, नाउ आपने कह दिया साहब। डॉक्टर साहब ने कह दिया भाई, डॉक्टर साहब ने कह दिया आज 9 बजे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर। थैंक यू।
थैंक यू। डॉक्टर रवि से मैंने आपकी बातचीत करवाई और साहब 9 बजे। जी 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 आज 9 बजे। आई डोंट नो, ये होता है प्यार, इसको कहते हैं प्यार, चाहे वो टोरंटो से प्यार है या कनाडा से प्यार है, क्योंकि टोरंटो रैप्टर्स इज ऑल द टीम इन यहाँ पर हमारे कनाडा में, तो ये कनाडा की टीम है, तो कनाडा से प्यार है, टोरंटो से प्यार है, या रैप्टर्स से प्यार है, या काइल लॉरी से प्यार है, या पूरी टीम से प्यार है, डजंट मैटर। मगर आज कीप योर फिंगर्स क्रॉस एंड वॉच इट एट 9 o'clock, स्टार्टिंग एट 9 o'clock। 9 बजे आज शुरू होगा ये गेम, एंड जो टीम जीतेगी वो आगे बढ़ जाएगी, जो टीम हारेगी वो अपने घरों को जाएंगे। मगर ये कि इट्स गोना बी अ वंडरफुल 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 गेम, एंड बड़ा बहुत अच्छा रहेगा। आपके बच्चे देखते हैं गेम?
हाँ जी, देखते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, हंगामा मचता रहता है।
हाँ
बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी, तो शोर मचते रहते हैं, फिर हम क्या करते हैं, दरवाज़ा बंद करते रहते हैं अपने भी, दोनों के भी।
अच्छा, तो आपके हस्बैंड भी देखते हैं?
हस्बैंड जो है वो जरा कुछ फिल्में देखने के शौकीन है।
अच्छा,
तो फिल्में देखते हैं, और मैं जरा खबरें मैंने पढ़नी होती हैं, तो मैं खबरों पे करती हूं।
हां,
तो जैसे अभी ये जो थी तो ये जब जना साहब का वो करना था तो वो मैं पढ़ रही थी, स्टैनली वॉलपर्ट की जो किताब थी अभी, जिसका मैं जिक्र भी कर रही थी, जना ऑफ पाकिस्तान, तो वो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो मैं ज़रा थोड़ा सा जैसे तैयार कर रही थी। और जसवंत सिंह की जो किताब आई थी जना, वो इस तरह, तो वो मतलब ये होता है कि कोई ना कोई दिन ऐसा होता है कि जिसमें कि आपको कुछ ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अब जैसे सितंबर का महीना शुरू हुआ था, अभी तक वो मैंने स्टोरी ख़त्म नहीं की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी वाशिंगटन पोस्ट में आई थी, जो ऑटोमन एम्पायर के बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो थे कैलिफ थे, जो थे रूलर जो थे सलीम, उनके ऊपर। तो वो अभी तक मेरी जो है वो स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, तो वो मैं अभी तक जो है वो पढ़ रही हूँ। तो इस तरह मेरा जो होता है ना माजिद भाई, पढ़ने का बहुत काम होता है, न्यूज़ एंड यू नो दीज रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट, तो वो जो है उसमें फिर काफ़ी टाइम निकल जाता है, और बच्चों के अपने इंटरेस्ट हैं, मियाँ साहब के अपने इंटरेस्ट।
व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट कायद आज़म अहमद अली जिन्ना जो आपने पढ़ा?
मजिद भाई, यानी प्रेजुडिस थोड़ा सा शायद आ जाएगा, क्योंकि जो स्टैनली वॉलपर्ट की किताब है जिना ऑफ पाकिस्तान, उसमें तो उन्होंने बहुत उसकी दोनों साइड्स बताई हैं, कुछ वीकनेसेस भी लिखी हैं, मगर ज़्यादा तारीफें लिखी हैं। लेकिन अगर बहुत ऑब्जेक्टिवली आपने पढ़ना है तो फिर मुझे लगता है जो जसवंत सिंह की जो किताब आई थी जिना, जिसके ऊपर बहुत शोर भी मच गया था वहाँ पर, आई थी उनकी, तो वो मुझे लगता है कि अगर वो हम पढ़ें तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नजर आती हैं। मुझे एज पर्सनली एज जिना साहब जो हैं, एज अ स्टेट्समैन जो हैं, उनकी सच्चाई और उनका किसी से ना घबराना और किसी से ना डरना, एक लीडर की ये बहुत बड़ी जो हैं वो
सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी ना,
सच्चाई और कैरेक्टर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल माजिद भाई,
बहुत जबरदस्त कैरेक्टर के मालिक
थे। हाँ हाँ हाँ, कोई चीज उनको लियोर नहीं कर सकती थी, कोई चीज उनको लियोर नहीं कर सकती थी।
उस जमाने में हमने बहुत सारे अफवाहें सुनी भाई, आई कैन नॉट कन्फर्म और रिकन्फर्म दैट कि किसका अफेयर किससे था, किसका अफेयर
नहीं, ये तो नोन चीजें हैं भाई, नरू साहब का लेडी माउंटबेटन के साथ था, ये तो वहां पे बुक्स भी लिखी हुई है।
कभी भी किसी ने ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा, चाहे उनके दोस्त हो या उनके दुश्मन हो, कभी किसी ने उन पे फिंगर नहीं उठाई,
नहीं
कि इनका कैरेक्टर पे कोई फिंगर नहीं उठा सकता।
यानी माजिद भाई, आप सोचें कि इससे बड़े कैरेक्टर की दलील आप उनकी क्या दे सकते हैं, कि पूरे का पूरा जो है मुस्लिम लीग का फंड उनके पास होता था, और आपने देखा ही है कि कितने ठाट बाट वाला बंदा था वो, सिगार्स पीने एंड ब्रिटिश मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रिटिश सूट्स, और घर ही देखें उस जमाने में, और फर्नीचर उस घर के अंदर देखें जो डाला हुआ था, एक रुपया मुस्लिम लीग के फंड से नहीं लिया हुआ, एक रुपया।
That's honesty.
हाँ, बल्कि जिस वक्त डेथ हुई तो अपना भी सारा कुछ दे गए कौम के नाम। इधर जो है 2 पैसे की किसी को किसी सीडीए की कुर्सी मिल जाती है, वो पूरे सीडीए को लूट लेता है। अभी आपको पता है जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, हजार हजार एकड़ जमीन दी हुई है ये इन्फ्लुएंशियल लोगों को, एक्सटेंशन की हुई है, पूरी पूरी सड़कें अपने घरों के अंदर ले ली हुई है। मतलब करप्शन भी आप किसी
हाइट,
हाँ, प्राइम मिनिस्टर कौन है, चिट्ठियां आप लिख के भेज रहे हैं कि भाई इतने तुम पैसे दोगे तो हम तुम्हारे
थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो मकसद के लिए पाकिस्तान बना और जो पॉइंट्स ये जिना साहब लेके आए कि भाई इस ये पॉइंट से हमारे सेक्युलर सोसाइटी समझ लें आप, कि यहाँ पर जो है हर चाहे आपका कोई कलर रेस एंड रिलीजन हो, रिगार्डलेस ऑफ कलर रेस एंड रिलीजन, इफ यू आर अ पाकिस्तानी यू आर अ पाकिस्तानी, जैसे हमारे ये कहते हैं ना जस्टिन ट्रूडो साहब,
कैनेडियन
इज अ कैनेडियन इज अ कैनेडियन, एंड सेम थिंग कायद आजम ने उस जमाने में कहा था कि पाकिस्तानी इज अ पाकिस्तानी इज अ पाकिस्तानी रिगार्डलेस ऑफ यू, जब मगर उनका रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को हटा के जब प्रेशर पड़ा ये
क्लर्जी का, हाँ रिलीजियस पार्टीज,
रिलीजियस पार्टीज का, जब हालांकि रिलीजियस पार्टीज वर अगेंस्ट बिल्डिंग
द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जमात इस्लामी हिंद जो थी वो तो कायद आजम को काफर कहती थी और वो तो पाकिस्तान को चाहती नहीं थी कि वो बने,
पाकिस्तान नहीं बने, तो ये
और आज ठेकेदार बने बैठे हैं पाकिस्तान के, वली खान
के वाली साहब और ये वो सब ये तो थे,
बिल्कुल
ये देवर
अगेंस्ट थे, अगेंस्ट
क्रिएशन,
मैं एक वाक्य सुनाऊंगी इस पे आपको,
इस क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट थे, तो अब ऑल ऑफ अ सडन जब ये क्रिएशन ऑफ जब पाकिस्तान बन गया तो वो सारे आ गए और उन्होंने आके कहा कि ये इसको ये ना कहें आपके रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसको इस्लामिक, और वही जो है स्टार्ट ऑफ
बोन ऑफ कंटेंशन, दैट वाज द फर्स्ट बोन ऑफ कंटेंशन
एग्जैक्टली
बिटवीन कम्युनिटीज, या
नेम से क्या फर्क पड़ता है अगर आप उसको रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखते या सिर्फ पाकिस्तान रखते, सिर्फ पाकिस्तान रखते और पाकिस्तान रखते तो पाकिस्तान इज फॉर एवरीबॉडी,
फॉर एवरीबॉडी। आप देखें, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है,
एग्जैक्टली
अगर थी तो वो डीना वाडिया के थी शायद, शायद वो भी, और वो डीना वाडिया जो है जो जिना साहब की बेटी थी वो कभी पाकिस्तान नहीं आई, उसने कभी क्लेम नहीं किया,
यस
आप देखें, तो हम जो सारे उधर ठेकेदार। अच्छा ये वाकया माजिद भाई आपने बहुत सारे लोगों से शायद पहले भी सुना होगा, लेकिन माय नाना जी इज अ विटनेस टू दिस थिंग। नाना जी के अगर आपको पता होगा कि उस वक्त जो NWFP के, उस वक्त NWFP नाम था ना खैबर पख्तूनख्वा का, तो NWFP के बहुत बड़े लीडर थे खान कयूम, अगर आपको उनके बारे में पता है, तो खान कयूम साहब जो थे उन्होंने मेरी नानी को अपनी बहन बनाया हुआ था, और आपको पता है कि पठानों की ट्रेडिशंस कैसे हैं कि जिसको भाई या बहन या दोस्त कह लें फिर जान दे देते हैं उसके लिए, तो एज अ रिजल्ट मेरे नाना जी के साथ भी उनका बड़ा प्यार था। नाना जी बहुत कोई बड़े मुस्लिम लीग के कोई लीडर नहीं थे, छोटे से एक थे मगर थे जरूर बड़े क्लोज। तो आपको पता है ये जो आपने वली खान वगैरह की बात की, तो इन्होंने जिस वक्त जिना साहब ने कहा कि मैं पूरा टूर करूंगा तो मैं जाऊंगा, मैं पिशावर भी मैं जाऊंगा, तो वली खान वगैरह ने कहा कि हम तो जो लोग उनके साथ आएंगे उनकी टांगे तोड़ देंगे और हम तो एंटर नहीं होने देंगे। तो खान कयूम साहब ने, मेरी जो वालदा के एक जो फर्स्ट कजन थे उन्होंने कुछ जमाना खाकसार तहरीक के लिए काम किया हुआ था, तो बहुत सारे उनके भी फॉलोअर्स थे और वर्कर थे। तो खान कयूम साहब ने मेरे नाना जी को फोन किया, उन्होंने कहा कि जिना साहब जो हैं वो पिशावर में आना शुरू कर रहे हैं, हमने बहुत सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, और मैं, नाना जी रावलपिंडी में थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको रावलपिंडी में कुछ अपने एक दो बंदे भेजूंगा, बाकी अगर आप कुछ इंतजाम कर सकते हैं। तो मेरे नाना जी ने अपने वही उसका वो जो भाई का बेटा था उसका नाम लिया कि हाँ वो खाकसार उसके साथ कुछ हैं तो हम उनको कुछ प्रोटेक्शन में हम ला सकेंगे इस तरह करके। तो नाना जी जिस वक्त वो कायद आजम साहब रावलपिंडी से गुजर के पिशावर की तरफ जा रहे थे तो नाना जी भी उस काफिले में उनके साथ थे, तो वहां पर जब पहुंचे तो खान कयूम साहब ने को वेलकम किया, तो ये सारा मतलब जो क्लोज फ्रेंड्स थे एंड ऑल दैट वो वर देयर। और नाना जी का ये कहना है जो हमें वो बड़े प्राउडली बताते थे, और फिर उनकी कुछ स्पीचेस भी थी रेडियो पाकिस्तान के लिए जो जिना साहब के साथ उनके एनकाउंटर्स थे उसमें, तो वो हमें बताते हैं, कहते हैं कि वहां पे क्योंकि जिना साहब को तो उर्दू आती नहीं थी, उर्दू में तो कभी उन्होंने स्पीच की नहीं, हमेशा अंग्रेजी बोलते थे, इंग्लिश में ही बात करते थे, तो कहते हैं वहां पर खड़े होकर उन्होंने काफी देर कोई घंटा डेढ़ घंटा स्पीच की।
इससे पहले कि हमें फोन कॉल आ रहे हैं यहाँ पर,
इतनी ज्यादा उर्दू नहीं आती थी, इतनी ज्यादा नहीं आती थी, कोई एक दो कोई उनकी स्पीचेस याद उर्दू में होंगी,
उर्दू में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही उर्दू में उनकी स्पीच लगाई थी और उर्दू में उन्होंने स्पीचेस की हैं,
कोई कम ही की हैं, बहुत ज्यादा नहीं आती थी,
ज्यादातर वही वाज उनको इंग्लिश पे बड़ा अबूर था,
ज्यादा एलोक्वेंस थी उसके अंदर,
कि वो बाज उतना कि बाज लोग जो है दे आर वेरी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग और एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इन इंग्लिश देन उर्दू, देयर इज नथिंग रॉन्ग,
बहुत कम मतलब उर्दू में करते थे स्पीच, ज्यादा अंग्रेजी नहीं करते थे,
उनको उर्दू भी आती थी और उर्दू में स्पीचें भी की हैं,
अच्छा की हैं थोड़ी सी की होंगी कोई जी। तो वहां पे जब गए तो वो इंग्लिश में उन्होंने स्पीच की कोई एक डेढ़ घंटा, तो नाना जी कहते जब एक डेढ़ घंटा स्पीच कर चुके हैं ना तो हर थोड़ी थोड़ी देर में वहां पे तालियां बजें क्राउड में, तो राणा जी कहते हैं खैर वो जब वो बड़ा ही टेंस क्योंकि माहौल था कि कहीं से कोई गोली ना चल जाए कुछ ना हो जाए ये वो, खैर वो जब चले गए तो नाना जी को खान कयूब साहब ने कहा कि आप ठहर जाएं मेरे पास, आज का दिन काफी यहाँ पे मतलब है वो टेंशन रही है, तो आप ठहर जाए। तो नाना जी उनके पास ठहर गए, तो जब वो ठहरे हुए थे ना, तो वहां पे कुछ जो लोग भी थे जलसे के, जो इनके ऑर्गेनाइजर थे, तो उनसे उनसे उनके पास बैठ गए। फिर आपको पता है पठानों का जो स्टाइल है, सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, कोई उसमें खान और वो छोटे का वो कोई वो नहीं होता। तो ये बैठ गए, तो नाना जी कहते हैं मैंने वैसे ही पूछा वहां पे लोगों से कि जिना साहब तो अंग्रेजी में बोल रहे थे, आपको समझ आती थी? तो कहते हैं वहां पे तकरीबन जितने लोग थे उन्होंने हमें कहा, मतलब और भी लीडर्स बैठे हुए थे कुछ, और भी बहुत सारे लोग थे, तो उन सबके सामने उन्होंने कहा मड़ा बात उसका समझ में आता है कि नहीं आता है, मगर इतना पता है कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता है।
सही बात है।
आप क्रेडिबिलिटी आदमी की देखें जरा, क्रेडिबिलिटी देखें कि एक ऐसी जबान में बात कर रहा है जो आपको समझ भी नहीं आ रही है, लेकिन आप उस पर बिलीव करते हैं कि ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। आज आप आज हमारे लीडर्स को देखें, बड़ी बड़ी स्पीचें, हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, और जीरो उनकी बीच में सच्चाई है। मुल्क को सवाए लूटने के कोई एजेंडा नहीं है,
सारे लूट रहे हैं।
और मतलब आप देखें कि मुल्क कहां से कहां आ गया है। हमने कितनी दफा ये बात की है कि ये वो मुल्क था जिसने कभी जर्मनी जैसे मुल्क को कर्जा दिया था। exactly. कोई आज के जमाने में 21st सेंचुरी में कोई ये बात मानेगा? अगर आप किसी गोरे को जाके बोलें कि पाकिस्तान ने तो जी जर्मनी को कर्जा दिया हुआ है, कोई मानेगा ये बात? कोई मानने को तैयार नहीं होगा। अगर आप कहेंगे जी 1967 में पाकिस्तान ने डेकेड ऑफ द ओनली साउथ एशियन कंट्री दैट A celebrated decade of development with United Nations was Pakistan. Was Pakistan. इतनी तारीफ उस, और वो United Nations की बुक में है। वो ये नहीं है कि मैंने आपने वो कोई किताब लिखी है, वो उनकी किताब में है, लिखा हुआ है। तो मतलब जिस वक्त आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे आप डाइवर्ट कर जाते हैं, जब आप उनसे हट जाते हैं, ये सुन्नी है, ये शिया है, ये अहमदी है, ये वो है, आपको कोई वो तकलीफ दे रहे हैं उस मुल्क में? अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंट्री, आप सबको सजा दें।
पाकिस्तानी
हाँ जी
रिगार्डलेस ऑफ द कलर रेस एंड रिलीजन।
और आप देखें कि जिना साहब की जो 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 पहले उनके अपॉइंटेड लोग थे उनके अंदर कोई आपको मतलब जो मुसलमान की जो हम अब डेफिनेशन देते हैं उसमें आपको कोई मुसलमान नजर आता था? पहला चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आप देखें, पहले जो हमारे थे रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशंस उनको आप देखें, तो मतलब आप देख लें। और हर किसी को जो है हमारे आर्मी के अंदर कितने हमारी जो एयरफोर्स थी, नेवी थी, कितने उसमें लोग हर तरह के थे। हम तो इतने बदनसीब लोग हैं माजिद भाई के
सेक्युलर सोसाइटी उन्होंने
क्रिएट की थी। और आप देखें
इसमें कोई रिलीजन का नाम नहीं था बीच में।
हाँ, आप देखें कि एक ऐसा साइंसदान जिसने इस मुल्क में कितनी वो इज्जत लेके आया, डॉक्टर अब्दुल सलाम। और आप देखें जिस वक्त वो अपना नोबेल प्राइज लेने के लिए गए हैं तो कोई उन्होंने पेंट सूट नहीं था पहना हुआ, उन्होंने अपनी शेरवानी पहनी थी और कुल्ला पहना हुआ था ऊपर। अब इतने प्राइड था उनको अपने मुल्क का, उधर पहन के गए हैं। आज हम उनको जो है वो मानने कोई तैयार नहीं है उनके नाम को। तो
मैं आप तमाम को मेरी जानिब से भी, आरिफ मुज़फ़्फ़र की जानिब से भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाज़िया जी, जब आप ये बात कर रही हैं तो मैं आई विल गो बैक टू माई सब्जेक्ट। पिछले 3-4 दिन से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज 5th जनरेशन वॉर, और जिसमें लोगों के दिमागों पे पहले कब्जा किया जाएगा, एंड देन डेफिनेटली टुडे इज सितंबर 9, सितंबर 11 है। और इसके लिए यानी ये वो तरीका कार था जबकि इन लोगों को अपॉइंट करके अपनी मर्जी के काम कराए गए। आई अंडरस्टैंड कि रिलीजन को इसमें ब्लेम किया जाता है, दिस इज़ ये बिल्कुल हकीकत है कि हम मज़हब के पैरोकार ज़रूर हैं, मगर कुछ लोगों ने उस वीक पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को अपने लिहाज से मोड़ा, जिसमें उसामा बिन लादिन भी शामिल थे। उसामा बिन लादिन वॉज वर्किंग फॉर सम एजेंसी, मगर लोगों को उनका ज़ाहरी फेस नहीं नज़र आया था। आज के दौर में भी बेशुमार लोग हैं जो अपने अपने एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं और लोगों को उनका ज़ाहरी शक्ल नज़र नहीं आती। आज पाकिस्तान में अगर डिवीज़न है कुछ, आज कराची में उन्होंने एक बंदे को अरेस्ट किया, आपने बल्कि न्यूज़ भी उसकी कवर की है कि ये क्या करते थे, बल्कि माजी जमाल साहब ने कवर किया कि ये लड़का क्या करता था वेबसाइट के ऊपर, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे ऐसे पैगाम पोस्ट करता था जिसके लिए अच्छे भले लोग भी गुस्से में आके उसका जवाब देना चाहते थे। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर एक इंसान गुस्से में है तो दूसरा इंसान उसकी उस चीज़ को इग्नोर करके आगे चला जाए, मगर यहाँ वो जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है उसमें तैश की वजह से डिफरेंट सेक्ट्स के दरमियान भी झगड़ा हुआ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान का अगर आप तस्करा करती हैं तो उनके पैगाम में उनकी कैबिनेट में जितने लोग थे उसमें तमाम के तमाम نان مسلمز تھے.
جی جی جی.
میں بلکہ یہاں پہ اس کو پوائنٹ, یہاں پہ جب ففتھ جنریشن وار کا جب میں ذکر کرتی ہوں تو میں یہ بھی مینشن کرنا چاہتی ہوں, آج تو وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں میرے اور آپ کے بیچ میں جو علماء کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی یہ پروف کر رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان نہیں بنایا تھا, ہمارے بڑوں نے جانے دی. میرے اپنے گھر میں میرے ابا جی جب اپنی پھپھو کا ذکر کرتے تھے یہ لوگ لٹ پٹ کے آئے تھے پاکستان. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آج تو ہر چیز کا پروپیگنڈا ہے, ایون وہ جو فاؤنڈرز تھے ان کو سے ان کی تمام کوششوں کا حق بھی لیا جا رہا ہے کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح کو, حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جب بیماری کا ذکر کر رہی ہیں آپ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جب ڈاکٹر الہی بخش پہنچتے ہیں تو انہوں نے جب ان کو چیک کیا, قائد اعظم محمد علی جناح جب زیارت بھی پہنچ گئے تو انہوں نے اپنی صحت کو پھر اگنور کرنا شروع کر دیا. پھر ایک سٹیج آتی ہے تقریباً دو مہینے ان کی موت سے پہلے کہ جب وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے تو فاطمہ جناح واز بیسائڈ ہم, تو انہوں نے ڈاکٹر الہی بخش کو بلایا. ڈاکٹر الہی بخش لاہور سے جب زیارت پہنچتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے, اگلے دن صبح ان کی ملاقات ہوتی ہے. معدہ ان کا بالکل درست تھا مگر ان کے پھیپھڑے بالکل جواب دے گئے تھے, اور ڈاکٹر الہی بخش نے ان کو خبر دی کہ آپ کو تو ٹیوبرکلوسس ہے یعنی تپیدک ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا یہ میرے لیے کوئی نئی خبر نہیں, اس کا تو مجھے 12 سال سے علم تھا. آپ امیجن کیجئے گا کہ آج میرے آپ میں وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کو ایز اے فاؤنڈر آف پاکستان کے مقام سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ پاکستان بننے میں ان کا رول نہیں تھا, شاید اور لوگوں کا رول تھا. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیماری کو ان لوگوں کو جو ان کے مخالف تھے ان کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں لگنے دیا تھا.
کھانستے ہی نہیں تھے, کھانستے ہی نہیں تھے. Exactly. کھانستے یعنی جس آدمی کو ٹی بی اور وہ کھانسے نا.
کھانسے نا. وہ اس لیے نہیں کھانستے تھے تاکہ بہت سے لوگ جو اس کاز کے اگینسٹ تھے, خاص طور ٹھیک ہے جی سب چاہتے تھے بڑی دیر سے جو تجھے یہ چل رہی تھی کہ برٹش جو ہیں وہ پاک و ہند کو یعنی ہندوستان کو چھوڑ دیں, مگر ایک پاکستان کو الگ سٹیٹ بنانے کے حوالے سے بہت سے لوگ تھے جو پاکستان کو الگ نہیں دے.
چرچل, آپ کو پتا ہے ونسٹن چرچل, وہ تو بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کو دی جائے, بلکہ ان کی جو لاسٹ سپیچ آپ پارلیمنٹ میں سنیں وہ کہتے ہیں یہ لوگ اتنے جاہل ہیں کیونکہ ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ان کو کچھ ورڈز جو تھے اردو یا ہندی جس کو آپ بول لیتے ہیں وہ سیکھ لیا تھا انہوں نے. تو انہوں نے جب اپنی سپیچ وہاں پہ کی انگلینڈ میں تو انہوں نے کہا یہ تو اتنے جاہل ہیں کہ یہ چولا اور چپاتی پہ بھی ٹیکس لگا دیں گے, اینڈ دے آر ناٹ ریڈی فار انڈیپینڈنس.
نو پرابلم, ابھی ان ملکوں کی آبادی کم ہے, آپ ان ملکوں کی آبادی کو بڑھ لینے دیں. آپ دیکھیے چولہا اور پانی کیا, ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگے گا یہاں پہ بھی, کوئی چیز ٹیکس کے بغیر نہیں ہوگی. آئی انڈرسٹینڈ, میں بھی 25 سال پہلے آئی تھی, پتے بھی اٹھائے جاتے تھے, ہر کام کیا جاتا تھا, آئی وی ایف کور ہوا کرتا تھا, آئی سائٹ کور ہوا کرتی ہوتی تھی, بے شمار اور بینیفٹ تھے. آج وہ بینیفٹ کیوں کم ہو گئے؟ کیونکہ آبادی کم ہوئی, حالانکہ امیگرینٹس آتے ہیں, امیگرینٹس کے سر کے اوپر یہ معاشرہ چلتا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح تو لبے لباب, میری پوری گفتگو کا یہ ہے, آپ کی نالج بڑی ہے, ماجد جمال صاحب کی نالج بڑی ہے, لبے لباب میری پوری گفتگو کا یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس ففتھ وار جن, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی بری طرح سے ہمارے دماغوں کو جکڑ لیا گیا ہے کہ ہم کو اپنے اور پرائے کے درمیان بھی تمیز نہیں رہی,
مکس کر دیا, گڈمٹ کر دیا,
سب کچھ گڈمٹ کر دیا. اور الحمدللہ اس کے بعد سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ ہر انسان اپنی سوابدید کے اوپر چیزوں کو مزید ڈس آرگنائز فارم میں لے کے آنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے. آپ بات کیجئے گا قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری 60 ڈیز کا میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گی. فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ رہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا, یہ تو جن جن خاندانوں کے بیچ میں آج میری اٹیچمنٹ پاکستان سے بہت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے ہماری سیکنڈ جنریشن ہمارے آنے کے بعد یا تھرڈ جنریشن کی وہ ایفیلیشن نہ ہو. میں ہر سال آئی تھنک مجھے دنیا میں کہیں بھی جانے کی آزادی ہے, مگر آئی پریفر کہ مجھے دو دفعہ بھی موقع ملے تو میں کم سے کم ان جگہوں پہ جا کے چائے پیاؤں جہاں پہ میں نے اپنا بچپن گزارا تھا, میں ان چوروں کو دیکھا ہوں جن جو میرے بچپن کے میرے ساتھی تھے. اور مگر بچوں کی ایفیلیشن وہ نہیں ہے, سیم ہمارے بڑوں کی جو ایفیلیشن تھی, لوگ لٹ پٹ کے آئے تھے, ہم نے خود اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا پاکستان کے لیے, شاید ہمارے میں وہ نہیں مگر آج ہمارے میں پاکستان کے لیے. میری ایک ملنے والی ہیں یہاں پہ, दीदी उनका नाम है माशाल्लाह, वेरी वेल सेटल्ड. तो कहने लगी कि मैं 427 के ऊपर ट्रेवल कर रही थी तो मुझे PIA का जहाज नजर आ गया. एंड वो कहती हैं कि मैं गाड़ी के बीच में ऊंची गाड़ी चलाते हुए, बहुत नीची फ्लाइट थी तो मैंने ऊंची ऊंची चलाना शुरू कर दिया, PIA. तो कहती मेरी बेटी साथ बैठी हुई थी तो उसने मेरी तरफ देखा, उसने कहा मॉम आर यू इन योर फ्रेम ऑफ माइंड, PIA का जहाज इज जस्ट एन एरोप्लेन. क्योंकि वो बच्ची को नहीं पता था कि उस लफ्ज PIA से उन खातून की क्या
यादें कितनी
क्या यादें. एंड हर हस्बैंड वाज जो शेल नॉर्थ अमेरिका है उसके वाइस प्रेसिडेंट थे.
आपको पता हो आरफा बाजी के कोई एक जमाना था यूब खान के जमाने में ही, ये आपको पता है कि ये जो PIA के जो यूनिफॉर्म्स हैं ये फ्रेंच डिजाइनर्स डिजाइन करते थे इनके यूनिफॉर्म्स. आप सोचे जरा क्या लेवल था इस कॉम का,
सेल्फिश
क्या स्टैंडर्ड था इस कॉम का
भाई. और एयरलाइंस को सेटल किया,
एमिरेट्स एयरलाइंस. एमिरेट्स एयरलाइंस इज अ प्राइम एग्जांपल. जिस वक्त वहां पे वो उन्होंने शेख अहमद ने जिस वक्त कहा, वहां पे वो जो चचा हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के जो कि रूलर ऑफ दुबई हैं, उन्होंने जब शेख अहमद ने कहा कि मैं अपनी एयरलाइंस दुबई की शुरू करना चाहता हूँ, सारा स्टाफ चाहे वो ग्राउंड स्टाफ था चाहे वो पायलट्स थे चाहे everything came from Pakistan, everybody people came from Pakistan. उन्होंने पूरा set up किया. और मुझे UAE पे सबसे ज्यादा अफसोस इसीलिए होता है, उनके सबसे बड़े अखबार खलीज टाइम्स, गल्फ न्यूज, उनकी मिलिट्री, उनका इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, everything was set up in Sheikh Rashid के जो पहले ruler of the, उनके जमाने में और Sheikh Zayed के जमाने में उन्होंने. आज पाकिस्तानियों का वहां पे वो नाम नहीं सुनना चाहते.
अब इसके भी मैं आपको जवाब,
नाम नहीं सुनना चाहते.
हम UAE को ब्लेम नहीं कर सकते, वक्त के साथ साथ हालात इतने बदलते चले जा रहे हैं शाजिया जी कि हमारे अपने हालात, मैं तो पाकिस्तान के अंदर भी जब देखती हूँ कि लोगों की अपनी अपनी जब प्रेफरेंसेस आ जाती हैं या अपने अपने उनके क्या लफ्ज इस्तेमाल हम करेंगे, जाती मफादात आ जाते हैं, तो वो अपने उन लोगों को भी पीछे छोड़ जाते हैं जो उनके साथ रहे होते हैं.
सारी उनकी UAE वालों की मिलिट्री जो है पाकिस्तान ने जो है वो की है, उनकी एयरफोर्स को लड़कों को ट्रेन किया है, सबको किया है. मुझे तो मतलब ये इस चीज पे भी अफसोस होता है कि पाकिस्तान की इतनी कंट्रीब्यूशन है दुनिया में. मुझे तो वो स्पीच याद है ट्रूडो साहब की, जब उन्होंने जाके कहा, उन्होंने कहा जी हम 40,000 वो पता नहीं इराकी या सीरियन ले आए, तो सारी दुनिया खड़े होकर तालियां. और मैंने कहा हम तो 2 मिलियन अफगान्स को फॉर द लास्ट 25 ईयर्स
पाकिस्तान ने कितनी
रखा हुआ है और कितनी कीमत फिर हमारे मुल्क ने 2 मिलियन से ऊपर बंदा हमने रखा है, पाकिस्तान का कोई नाम ही नहीं है. कोई नाम ही नहीं और ये 40,000 बंदा आ जाता है.
पहले बांग्लादेश से जो लोग,
हाँ जी माजिद भाई, मैं अब शाजी जी से ने भी बात की और हमने बिल्कुल एक टॉपिक को डिस्कस नहीं किया. कल एक ट्वीट थी और मैं उस ट्वीट को रिस्पॉन्ड करना भी नहीं चाहती. यकीनन बैरूनी हर मुल्क की एजेंसीज हैं, बैरूनी एजेंसीज जितना काम कर रही हैं आपको मालूम है. मैंने उस ट्वीट के बदल में सिर्फ एक और ट्वीट ही किया था. आपको पता ही होगा कि एक आर्मी के मेजर हैं जिन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए हमारे उल्मा को बेट करने का कहा है कि उनको आप उनको 2-2 लाख रुपया देना शुरू कर दें, आपकी जुबान बोलना शुरू कर देंगे. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. और न सिर्फ मैं उल्मा की बात करती हूँ बल्कि आम तौर पर वो लोग भी जो जिनके अपने ज़ाती मफादात हैं अपनी न्यूज़ को वहाँ से उठाते हैं और अपने लिहाज से सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों के दिमागों को तब्दील करने का बायस बन रहे हैं.
आपको पता है इंडिया ने सबसे ज्यादा किस तरह सीप करने की कोशिश की है दुनिया की सोसाइटी में, थ्रू देयर
फिल्म्स. इंदिरा गांधी साहिबा
थ्रू देयर फिल्म्स. आप यकीन करें कि वो जो उन्होंने हीरो बना दिए राजेश खन्ना एंड अमिताभ बच्चन एंड वो सारे, और वो जो शाहरुख खान एंड, और फिर अपनी मिलिट्री के ऊपर फिल्में बनाना शुरू कर दी और वो पाकिस्तान में आई और बड़े बच्चों ने देखा, मेरे अपने बच्चे ने. दैट इज वाई आई हैव स्टॉप्ड वॉचिंग ऑल दीज फिल्म्स और अपने घर में भी मैंने बैन कर दिए. मेरे अपने बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया पाकिस्तान ने ये किया.
मैं रिपीटेडली ये बात आपसे कहती चली जा रही हूँ कि डिप्लोमेसी के जरिए
yeah, yeah, yeah.
अपनी فلموں کے ذریعے, اپنی صحافت کے ذریعے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ قلم کو خریدنے کے بعد انہوں نے جس طرح سے پاکستان کو ایکسپلوئٹ کیا ہے. پاکستان نے آج تک ٹیررزم کی جتنی قیمت چکائی ہے ہم اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. میں کوئکلی اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو قائد اعظم کی زندگی چند آخری دنوں کو شیئر کر سکوں. آئی ڈونٹ ہیو ویری مچ ٹائم کیونکہ 7 بجے ہم نیوز کی طرف چلے جائیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ان تمام اسپانسرز کی جن کے توسط سے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے ویکینڈ کے اوپر آپ جو ہمارا ویلج ٹیسٹ ہے ضرور تشریف لے کے جائیں. بہت خوبصورت, آج مجھے وہاں سے گزرنے کا موقع ملا. انہوں نے اکثر نا لوگ کو ہوتا تھا کہ اینٹرنس کہاں پہ ہے, دے اوپنڈ اے سیکنڈ اینٹرنس, بیوٹیفل اینٹرنس. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور جائیے گا, اٹس یور پرائڈ, اٹس آر پرائڈ ویلج ٹیسٹ کے نام سے, اور 4141 ڈکسی روڈ پہ. صاحب قائد اعظم کی جب میں بات کر رہی ہوں, اور قائد اعظم محمد علی جناح جب زیارت ہوئے, کہتے ہیں کہ زیارت اپنے صنوبر کے درختوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے. کوئٹہ سے تقریباً 133 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ 2449 میٹر کی بلندی کے اوپر زیارت کا علاقہ ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح یہ زیارت سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر قائد اعظم کی جو رہائش تھی. ان کی بہن فاطمہ نے اپنی کتاب مائی برادر میں تحریر کیا ہے, ان کی اپنی بہن نے, اور ان سے زیادہ وقت کسی نے ان کے ساتھ گزارا نہیں. ان کی تحریر یقیناً مستند تحریر ہوگی. تو مائی برادر میں وہ لکھتی ہیں کہ کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا فیصلہ جناح کا ذاتی فیصلہ تھا, محمد علی جناح کا ذاتی فیصلہ تھا, کیونکہ ان کی سرکاری اور غیر سرکاری مصروفیات کی باعث کوئٹہ بھی انہیں آرام کا موقع نہیں مل رہا تھا. یعنی اپنی بیماری کی, دس از دی سنسیئرٹی آف, یعنی انتہا سنسیئرٹی کی, اپنی اتنی بیماری کے باوجود بھی قائد اعظم محمد علی جناح اپنی میٹنگز بھی کر رہے تھے, لوگوں سے ملاقات بھی کیا کرتے ہوتے تھے, دفتری امور کو بھی بجا لے کے آ رہے تھے. بہرحال مسلسل دعوتیں بھی ہو رہی تھی کیونکہ پاکستان بنے ابھی کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا. مگر وہاں سے وہ پھر کہتے ہیں کہ زیارت پہنچنے کے بعد انہوں نے کسی مستند معالج سے علاج کرانے پر توجہ نہ دی. اب زیارت جا کے بھی انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا. انہیں دنوں نے ان کو اطلاع ملی کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ اپنے مریض کو دیکھنے کے لیے, قائد اعظم کے لیے نہیں, وہ اپنے کسی اور, ریاض علی شاہ اپنے کسی اور مریض کو دیکھنے کے لیے زیارت میں تشریف لائے تھے. فاطمہ جناح نے اپنے بھائی سے کہا کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی زیارت میں موجودگی سے فائدہ لیجئے گا, مگر قائد اعظم نے بات کو سنا انسنا کر دیا. انہیں کوئی, قائد اعظم نے کہا مجھے کوئی بہت سنگین مرض لاحق نہیں ہے. کون لوگ ہیں جو آج ان سے یہ چیز لینا چاہتے ہیں کہ قائد اعظم واز ناٹ دا فاؤنڈر آف پاکستان, انہوں نے وہ سٹرگل نہیں کی تھی. تو قائد اعظم نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے کوئی زیادہ مرض لاحق نہیں ہے, اور بس میرا تھوڑا سا معدہ خراب ہے, کام کی زیادتی ہے اس لیے میرا معدہ خراب ہے. کہتی ہیں فاطمہ جناح اپنی مائی برادر کتاب میں لکھتی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ڈاکٹر سے ملنے سے بہت گریز کرتے تھے, علاج کی گریز ان کی یہی پرانی عادت ایک دفعہ مرتبہ پھر اوت کر آئی, مگر جلد ہی اپنی عادت کو, کہ اب طبیعت بہت زیادہ جب خراب ہو گئی تو ایک ہفتے کے اندر اندر ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی, اور یہ کسی تیسرے حوالے سے نہیں ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی برادر میں تحریر کرتی ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ ان کی صحت خود ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی. قائد اعظم محمد علی جناح کا خیال تھا کہ وہ صحت کو اپنی مرضی کے تابع رکھ سکتے ہیں, یعنی میں, میری صحت میرے کنٹرول میں ہے, مگر اب ان کو, انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں, اب معاملات جو ہیں میرے ہاتھ سے باہر نکل گئے اور میں اور خطرہ مول نہیں لینا چاہتا, یقیناً مجھے طبی مشورے کی ضرورت ہے. محترمہ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ جو ہی انہیں اپنے بھائی کے اس ارادے کا علم ہوا, انہوں نے ان کے پرائیویٹ سیکرٹری فرخ امین کے ذریعے کابینہ کے سیکرٹری جنرل چوہدری محمد علی کو پیغام بھیجوایا کہ لاہور سے وہ ممتاز فزیشن کرنل الہی بخش کو ہوائی جہاز کے ذریعے زیارت بھیج دیں. کہتے ہیں کہ ویری نیکسٹ ڈے جو کرنل الہی بخش تھے وہ زیارت پہنچے, مگر سفر کے دوران فلائٹ کی وجہ سے, کوئی اسپیشل فلائٹ لے کے نہیں گئے تھے, اپنی ریگولر فلائٹ کے بیچ میں تشریف لاتے ہیں, تو زیارت پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تھی, تو وہ اس رات قائد اعظم محمد علی جناح سے نہ مل پائے. دن بھر کے سفر کرنے کے باوجود زیارت پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور محمد علی جناح سے ان کی ملاقات اگلی صبح ہی ممکن ہو سکی. انہوں نے ڈاکٹر الہی بخش نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں نے یہ بات سننے کی ہے, ڈاکٹر کرنل ڈاکٹر الہی بخش اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے قائد سے ان کی بیماری سے متعلق پوچھا, ان کی حقیقت پوچھی, تو ان کا تمام زور اسی بات پر تھا کہ میں بالکل بھلا چنگا ہوں اور یہ کہ بس میدا خراب ہے, میدا ٹھیک ہو جائے اور میں معمول کے مطابق کام کرنے لگوں گا. مگر جب ڈاکٹر الہی بخش نے محمد علی جناح کا سرسری معائنہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے ان کا میدا بالکل درست تھا لیکن ان کے سینے اور پھیپھڑوں میں صورتحال اطمینان بخش نہیں. ڈاکٹر الہی بخش اپنی کتاب میں ہی لکھتے ہیں کہ مشورے پر اگلے دن کوئٹہ کے سول سرجن ڈاکٹر صدیقی اور کلینکل پیتھولوجسٹ ڈاکٹر محمود ضروری آلات اور ساز و سامان کے ساتھ زیارت پہنچ گئے. انہوں نے فوری طور پر محمد علی جناح کے ٹیسٹ کیے جن کے نتائج نے ڈاکٹر الہی بخش ان کے خدشات کی تصدیق کر دی, یعنی قائد اعظم محمد علی جناح تپدک کے مرض میں مبتلا تھے. چودھری محمد حسین چٹھا نے اپنے انٹرویو میں ضمیر احمد منیر کو بتایا کہ جب ڈاکٹر الہی بخش نے محمد علی جناح کو بتایا کہ انہیں تپدک کا مرض لاحق ہے, یہ بات قابل غور ہے کہ جب انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو جب انہوں نے انفارم کیا کہ آپ کو تو ٹیوبرکلوسس ہے یعنی تپدک کا مرض لاحق ہے, تو محمد علی جناح نے جواب دیا, ڈاکٹر یہ تو میں 12 سال سے جانتا ہوں, یہ تو میں 12 سال سے جانتا ہوں, میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگے. آپ کو بتائیے تقسیم کے وقت جواہر لال نہرو, گاندھی صاحب, یعنی یہ تمام کے تمام کلیگس تھے, ایسوسیٹ تھے, مگر اپنی اپنی بات کو منوانا چاہتے تھے. تو قائد اعظم نے کہا, اب یہ مستند تحریریں ہیں ڈاکٹر الہی بخش کی کتاب میں, کرنل ڈاکٹر الہی بخش کی کتاب میں, تو انہوں نے کہا کہ میں 12 سال سے جانتا ہوں مگر میں نے اپنے مرض کو اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ میری موت کا انتظار کرنے لگیں. برصغیر کی جد و جہد آزادی کے موضوع پر ایک اور کتاب لکھی فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مصنفین. فریڈم ایٹ مڈ نائٹ اس لیے اس کو کہا گیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا, کیونکہ رات کے 12 بجے 15 تاریخ کو, 14 کی انتہا 15 تاریخ کو رات کے 12 بجے برٹش گورنمنٹ نے اقتدار منتقل کیا تھا ہندوستان اور پاکستان. پاکستان کے جنرل قائد اعظم محمد علی جناح بنے تھے, ہندوستان کے جنرل جو تھے وہ گورنر جنرل جو تھے قائد اعظم محمد علی جناح بنے تھے, اور ہندوستان کے جو گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن بنے تھے. اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن, جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی میں کسی ایک کو بھی غیر معمولی راز کا علم, راز کیا تھا؟ قائد اعظم کی بیماری کا. اگر مڈ نائٹ تک کسی ایک کو بھی, یہ کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مصنف لیری کونز جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن, جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی میں کسی ایک کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا جو بمبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر جے اے ایل پٹیل کے دفتر کی تجوری میں انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا, تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا اور آج ایشیا کی تاریخ کا دھارا کسی اور رخ پر بہرا ہوتا. اور یہ وہ راز تھا جس سے برطانوی سیکرٹ سروس بھی آشنا نہ تھی, اور یہ راز تھا جناح کے پھیپھڑوں کا ایکس رے جس میں بانی پاکستان کے پھیپھڑوں پر ٹیبل ٹینس کی گیند کے برابر 2 بڑے دھبے صاف نظر آ رہے تھے. ہر دھبے کے گرد ایک ہالا تھا جس سے یہ واضح ہوتا تھا کہ تپدک کا مرض جناح کے پھیپھڑوں پر کس قدر جارحانہ انداز میں حملہ آور ہو چکا ہے. ڈاکٹر پٹیل نے جناح محمد علی جناح کی درخواست پر ایکس ریز کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا تھا, تاہم انہوں نے علاج اور صحت یابی کے لیے یہ مشورہ ضرور دیا کہ ان کا علاج صرف اور صرف آرام سے ہے, مگر بانی پاکستان کے پاس اس وقت آرام کا وقت نہیں تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کوئی کاز کو اپنے سر پہ لیا اور اس کاز کو سر پہ چڑھایا. میں شاید اس آرٹیکل کو پورا نہ کر سکوں, انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی تو میں منڈے کو ضرور کور کروں گی. میں آپ کو بار بار صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں, ایوری بڈی اینڈ اینی بڈی جس تک میرا پیغام پہنچ سکتا, جن لوگوں کو کام کرنا ہوتا ہے وہ دوسروں کو نہیں کہا کرتے ہوتے, وہ خود اٹھ کے اپنا کام کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم آج کے دور کے مطابق یہ جو جس پروپیگنڈا کا میں اور آپ شکار ہو رہے ہیں اس میں سے کسی طرح سے باہر نکل آئیں. کچھ لوگوں کے ذہن کمزور ہوتے ہیں, وہ اس پروپیگنڈا کو جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ مضبوط ہوتے ہیں. ٹرائی ٹو بی اے اسٹرانگ پرسن. اور یہ جو سنی سنائی باتیں دوسرے ریلیجنز کے بارے میں, دوسرے سیکٹس کے بارے میں, اگر ایک غلطی کرے تو آپ اس غلطی کا شکار مت ہوئیے گا. قائد اعظم کے پاس وقت کم تھا, کام بہت زیادہ تھا, باقاعدہ علاج کا اہتمام کبھی نہ کر سکے. وہ اتنی آہنی ہمت کے مالک تھے. اللہ کرے میں اور آپ بھی اس آہنی ہمت کے مالک بن جائیں. انہوں نے اپنے مرض کے بارے میں اپنی سگی بہن فاطمہ جناح تک کوئی اطلاع نہیں دی تھی, حتیٰ کہ انہوں نے ڈاکٹر الہی بخش کو بھی اپنے راز سے اسی وقت آگاہ کیا جب وہ خود تشخیص کیے, جب انہوں نے, حالانکہ ان کو بہت پہلے پتا تھا. اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ کتاب آج بھی ایک ہے جس کے میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر فریڈم ایٹ مڈ نائٹ بک ہے, اس کے رائٹر ہیں لیری کونز, انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن یا جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ قائد اعظم محمد علی کے ایکس رے میں وہ دو اسپاٹس آ چکے ہیں جس میں ان کی تپدک کا مرض جو ہے اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہے, تو شاید اس پروسیس کو ڈیلے کر دیا جاتا اور پاکستان کبھی وجود